गाइए गण पति जग बंदन शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गण पति जग वंदन 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 सिद्धि सदन गज पदन विनायक सिद्धि सदन सिद्धि सदन गज पदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लाय कृपा सिंधु सुंदर सब शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि विद्या वारिधि विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता गाइए गण पति जग वंदन गाइए गण पति जग वंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गण पति जग वंदन गाइए गण गाइए गण पति जग मांगत तुलसी 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 मांगत तुलसी दास कर प्योरे मांगत तुलसी मांगत तुलसी दास कर चोरे बस हुरावन सिया मानस मोरे बस हीरावन सिया मानस मोरे गाइए गण पति जग वंदन गाइए गण पति जग वंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन சங்கர சுவன பவானிக்கு நந்தன காய கணபதி ஜகவந்தன
நாராயண வாசுதேவா நாராயண வாசுதேவா
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतरयामी, ओ स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी आप पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विद मिलो दयामय, किस विद मिलो कृपामय, तुम सो मैं कुमारी। ओम जय जगदीश बांधो। दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी आप रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, पार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाबो, पाप हरो देवा, ओ स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाबो, श्रद्धा प्रेम बढ़ाबो, संतन की सेवा। ओम जय स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
व्यासदास्यव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रृण्वात्रेण हर्षितं समाश्रयेत्। ॐ शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहवानाय श्रीकृष्णाय नमः। यथा लब्धोपचार मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ यज्ञेन यज्ञमाय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः स्वचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय सहस्रायने नमो वयं विष्णुनाय पुरमहे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णो ददातु। कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेश्यं राज्यं महाधिपतये मयंक मंदप्रियाय स्यात् सर्वभौम सर्वाय स अन्तादा परार्ध प्रदवेश मंदपरंताय एकराजति तदपयेति श्लोको अवगतो मरतः परिष्कारवत्संग्रे अविष्टस्य काम प्रविष्टे देवा सभा सदा। ओम विश्वतसु सुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरतत साक्षम्बाहुभ्यां दंपत्ति संपत्रे रदावा भूमिजन्नन्न देव एक सेवंति कावकुल चंपक पाटलाब्जी पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलस्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलि श्रीमद भागवत महापुराण की जय। बोलि वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलि श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलि श्री परीक्षित जी महाराज।
नारायण वासुदेव
हे नाथ 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 नारायण वासुदेव
रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की
जय।
श्री वेदव्यास जी महाराज की
जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की
जय।
श्री परीक्षित महाराज की
जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की। एयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस् त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतये प्सितमन्वधाव वंदे महापुरुषते चरणारविन्दौ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणौ सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विरते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनु प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यं संपद्य जहात्यजा मनुषै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिः तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां आनंद धामनि चिदेकरसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगते स्फुरन्तं तावद्बलात् स्पृहन्तर्हिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जू अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनमी परम दयालु परम कृपालु परब्रह्म परमात्म स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणार विंदों में सादर प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर उपस्थित संत जन एवं भागवत भक्त जन भक्ति स्वरूप माताओं बहनों का हार्दिक सादराभिवादन कर आज श्रीमद् भागवत के पाक्षिक साप्ताहिक कथा का शुभारंभ श्रीमद् भागवत की महिमा के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के नाम से हम लोगों के सामने एक पुस्तक का स्वरूप सामने आता है, परंतु जब भागवत को आप सुनेंगे तो एक दूसरी चीज सामने आएगी। भागवत का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान के साथ संबंध करे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे कोई भी हो, भगवत इदं भागवतम्, भगवत अयम् भागवत, भगवत इयम् भागवती, अर्थात जो भगवान के साथ जुड़ता है वो भागवत होता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अखिल चराचरात्मक जगत भागवत ही है, परंतु इसको भागवत के रूप में जो देखना है वो असली भागवत है। इसी कारण से वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना करी है। श्रीमद् भागवत का कब से प्रादुर्भाव हुआ, कहां से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ, इसका कोई काल नहीं है। ये कालातीत परब्रह्म परमात्मा का कालातीत भाव है। भगवान का जन्म कब से हुआ ऐसा कोई कहे, अथवा भगवान के भक्तों का जन्म कब से हुआ ऐसा कोई कहे, तो फिर कहेंगे कि भागवत का भी जन्म कब से हुआ। कहने के लिए हम कह देते हैं कि भागवत की रचना तो वेदव्यास जी ने की है, तो जो वेदव्यास जी का काल है वही तो भागवत का काल होगा। नहीं, भागवत का वो काल नहीं है, वेदव्यास जी ने तो लिखा है, परंतु भागवत पूर्व सिद्ध है, भागवत अनादि है और भागवत अनंत है। भागवत भगवान के संकल्प का नाम है, भागवत भगवान के उपदेश का नाम है। ये उपदेश भगवान ने तभी दे दिया था ब्रह्मा जी को जब वे सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी की रचना कर चुके थे, माने सृष्टि से पहले का भागवत है, ये आज का नहीं है, व्यास जी के युग का नहीं है, और न केवल ब्रह्मा जी के युग का ही है। ब्रह्मा जी का भी युग कितना विलक्षण होगा, इस समय ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और ये 12 कल्प है। श्रीमद् भागवत को तो पद्म कल्प में कह दिया गया था, पद्म कल्प में भगवान ने भागवत कही है, लेकिन भगवान के मन में ये कब आया होगा इसका कौन अंदाज लगा सकता है। ये श्रीमद् भागवत बड़ा विचित्र है और इसमें सुखदेव जी महाराज का जो भागवत के रूप में व्याख्यान हुआ है यह भी एक बहुत अलौकिक चीज है। हमारे सुखदेव जी महाराज वास्तव में एक तोता ही थे और वे ऐसे तोता थे कि वो कभी राधा जी के पास आ गए। ये सुखदेव जी महाराज राधा कृपा प्राप्त थे, भगवान या भगवती भगवान की अनादि शक्ति कब कैसे किस पर कैसे कृपा करती है इसका कोई हेतु नहीं है, इसीलिए वो अहेतु की कृपा मानी जाती है। भगवान क्यों कृपा करते हैं इसका कोई उत्तर नहीं है, कहते भगवान का स्वभाव है इसलिए कृपा करते हैं, तो फिर भगवान का स्वभाव है सुखदेव जी पर ही क्यों की, इसका जवाब नहीं है, कृपा है। सुखदेव जी महाराज को जब वे तोता रूप में थे तब उनको राधा की कृपा मिल गई और उस राधा जी ने उस छोटे से सुख शावक को बहुत प्यार से अपने सुंदर सोने के पिंजरे में पाला पोषा और उसको भगवान श्री कृष्ण की विचित्र विचित्र लीलाएं विचित्र विचित्र प्रेम की कथाएं सुनाई। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की जितनी प्रेम भरी लीलाएं याद थी जानती थी या लीला में वो सहभागिनी थी वो सब लीला सुनने के पश्चात वही तोता भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंचाया गया और वहां जाते ही भगवान के सामने वो राधा जी के द्वारा सिखाया हुआ भगवत गुणगान करने लगा। तो भगवान ने देखा कि ओ मेरे गुणगान तभी पूरे होते हैं जब राधा जी की इसमें पूरी भक्ति हो जाए। भगवान ने देखा कि इसको मैं राधा जी के प्रेम की बात बताऊं। प्रेमियों का एक स्वभाव होता है, प्रेमी माने भगवान और भक्तजन, इन दोनों का स्वभाव होता है कि वे अपने में प्रेम कम मानते हैं और अपने प्रेमास्पद में प्रेम ज्यादा मानते हैं। राधा जी को लगता है कि कृष्ण का मेरे प्रति कितना प्रेम है और कृष्ण को लगता है कि राधा का मेरे प्रति कितना प्रेम है, इतना प्रेम मुझ में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की बातें बताई, प्रेम की बातें बताई। अब वो तोता जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाए और राधा जी की बात सुनाए तो भगवान सुनते सुनते मुग्ध हो जाए, और भगवान की बात सुनकर के जब वो राधा जी को सुनाए तो राधा जी सुनते सुनते मुग्ध हो जाए। दोनों के पास जाता रहता था और राधा कृष्ण का जाप करता हुआ दोनों से ही उसने बहुत प्रेम की बातें सुनी। वो आत्मविभोर हो गया, वो तोता एक नए प्रेम के राज्य में डूब गया। अब उसे ऐसा लगा कि ये प्रेम ऐसा अलौकिक है, ये प्रेम तो जन जन के मन मन तक पहुंचना चाहिए। हमारे सुखदेव जी महाराज गोलोक से शिवलोक की तरफ प्रस्थान किए, क्योंकि ये चीज तो सब लोक के अंदर ठहरने वाली और सब लोगों का कल्याण करने वाली जो है, तो चलो शिवलोक में चलते हैं। देखो ये गोलोक है, शिवलोक है, बैकुंठ लोक है, साकेत लोक है, ये एक ही लोक के अपने अपने ढंग के नाम है। शैव शिवलोक बोलेंगे, वैष्णव वैकुंठ बोलेंगे, और उसमें भी राम के अनुयायी साकेत बोलेंगे, कार्ष्णी उसको गोलोक बोलेंगे, ये अपने अपने ढंग के नाम है। कोई छोटा सा देश तो है नहीं बैकुंठ, बहुत विशाल, जैसे भगवान का कोई अंत नहीं ऐसे भगवान के वैकुंठ का भी अंत नहीं। उस वैकुंठ में ही शिवलोक, उसी में ही साकेत लोक, उसी में ही गोलोक, उसमें ही सब लोक समाये हुए हैं। तो वो शिवलोक में चले गए, शिवलोक में जाके देखा तो वहां भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ऐसे अलौकिक ध्यान में कि जिनके अंदर प्रेम उमड़ रहा है, और वहां कोई नहीं सिवाय पार्वती के, दूसरा कोई नहीं है। पार्वती जी भी बहुत दिनों से शिवजी से पूछती थी कि हे महाराज, आप तपस्या किसके लिए करते हैं, आराधना किसके लिए करते हैं, आपका पूजनीय कौन है, संसार में तो आप स्वयं सबके पूज्य है। परंतु भगवान शंकर ने कहा कि इस बात का उत्तर तो मैं, मेरी मर्जी आएगी तब दूंगा, ये तुम्हारे प्रश्न करने से तुमको मैं बता दूं ऐसा प्रश्न नहीं है, इस प्रश्न का समाधान मैं मेरी मर्जी से अच्छा वातावरण देख के करूंगा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन भगवान शंकर भगवान कृष्ण के प्रेम में खूब लबालब डूब गए। ऐसा वो प्रेम था जिसमें न तो कहना होता है न सुनना होता है, न उसमें समाधि होती है न व्युत्थान होता है। उसमें क्या होता है वो तो वही जान सकते हैं, परंतु एक अलौकिक प्रेम की लहरें भगवान शंकर के हृदय में उमड़ने लगी। भगवान शंकर ने विचार किया कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम तो पार्वती को बताना चाहिए। तब उन्होंने पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, तुमने हमसे बहुत पहले एक बात पूछी थी कि आप किसकी समाधि लगाते हो, किसमें समाहित होते हो, आपका भी कोई आराध्य है क्या, कभी कभी आपके आंखों से भी कुछ आंसू टपकते देखे गए हैं, आप भी किसी से स्नेह करते हैं, किसी में आपका प्यार है, कौन है वो आपका। उस प्रश्न का उत्तर अब मैं देना जा रहा हूं, परंतु पार्वती इसमें ध्यान की बड़ी आवश्यकता, एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। तुम जितने एकाग्र होकर सब कुछ विस्मृत होकर शरीर की और घर बार की सब चिंता छोड़कर जितने एकाग्र होकर मेरे कहे हुए वचनों में डूबोगी उतना ही वो प्रेम तुम्हारे अंदर ही अंदर वो प्रकट भी हो जाएगा। तो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधानी से सुनना। देखो यहां अब कोई दूसरा सुनने वाला भी नहीं है, तो पार्वती को लगा कि आज तो मुझ पर प्राणनाथ की अनुपम कृपा हो गई। पार्वती आनंद में विभोर होकर हाथ जोड़ करके अपने पति को प्रणाम करके कहा, महाराज इस दासी पर आज आपकी जो निरतिशय कृपा हुई है उसके लिए मैं आपका बार बार अभिनंदन करती हूँ, और बड़े समाहित चित्त से आपके मुख से निकलने वाली वाणी को सुनने के लिए आतुर हूँ। भगवान शंकर अब प्रेम समाधि में डूबे हुए बोलने लगे। वो जो ही प्रेम के अंदर बोलना चालू किए उधर से ही हमारे गोलोक से सुखदेव जी महाराज उस तोते के रूप में उन दोनों के पास पहुंच गए, और जाकर चुपचाप पहले तो दोनों की मुद्रा देखी और फिर दोनों के भाव को ताड़ गए। विचार किया, अरे ये तो बहुत विचित्र बात यहाँ सुनने को मिलने वाली है, बैठे रहो यहाँ। भगवान शंकर बोलते गए, सुखदेव जी महाराज सुनते गए, और प्रधान श्रोत्री थी हमारी जगत जननी माता पार्वती जी, तो पार्वती जी भी सुनती गई। सुनते सुनते भगवान शंकर के बोलने से पहले पार्वती जी की समाधि अवस्था हो गई, और जहां बोलते बोलते शंकर भगवान मामूली से रुकते थे तो वहां पार्वती जी एक हुंकारा देती थी स्वीकृति के लिए, हूं हूं ऐसा बोलती थी, तो उससे बोलने वाले के मन में नए नए भाव पैदा होते ही है। यदि वक्ता को ये पता चले कि हमारे श्रोता तो इस भयंकर गर्मी में बैठ करके और हम यहाँ सुनने के लिए तो आए ही हैं पर वो तो सो रहे हैं, और ये पता चले कि यहाँ कुछ बातें हो रही है, या ये पता चले कि कई श्रोता इधर उधर देख रहे हैं, तो वक्ता के मन पर एक बहुत बड़ा धक्का सा लगता है, ये निश्चित बात है। तो वक्ता के भाव वही रुक जाते हैं, वो जो अपने मन की बात कहना चाहे वो कह नहीं सकता, इसलिए श्रोता के ऊपर ये पूर्ण जिम्मेवारी है कि वो वक्ता के भाव की गहराई के अंदर डूबता हुआ सुने, और ये पार्वती के अंदर किसी प्रकार से कमी नहीं थी, पार्वती जी बहुत प्रेम से सुन रही थी। सुनते सुनते पार्वती जी को समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई, और वो स्वीकृति वाचक हुंकार देना बंद कर दिया। उसके बंद होते ही भगवान शंकर को तो ये भान ही नहीं रहा कि कोई हुंकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन दे रहा है। भगवान शंकर बोल रहे हैं उससे पहले सुनते सुनते समाधि लग गई पार्वती जी की, सुनने वाले में इतनी ताकत होती है। इधर वो जो सुख शावक आया वो एकदम स्तब्ध होकर के सुन रहा था, तो उसने पार्वती के स्वर में स्वर मिलाते हुए हुंकारा देना चालू किया, तो भगवान शंकर उस बात को पूरा कह गए जो उनके मन की बात थी। पूरी बात कहने के पश्चात भगवान शंकर ने उन नेत्र खोला, देखा कि पार्वती तो बहुत देर से प्रेम समाधि में अचेत हुई हुई है, जो इसको होना चाहिए बेसुध हो गई। जो जगत से बेसुध होता है उसी को ही वास्तव में सुध वाला बोलते हैं, उसको असली सुध आ गई। पार्वती तो अपने प्रेम में डूबी हुई थी, न उनको पति याद आते हैं, न उनको लोक याद आता है, वो तो एक अलौकिक दिव्य भगवत प्रेम रस में समाहित हो गई। शंकर जी ने देखा कि फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था। भगवान शंकर के लिए कोई कठिन बात नहीं थी, उन्होंने थोड़ी सी दृष्टि का पसारा किया तो आगे उनको एक सुख शावक दिखाया। अरे अयम असौ सुख शावक है, यह वो सुख शावक है, ये जो तोता है, छोटा सा तोता का बच्चा, इसने तो हमारे इस ब्रह्म ज्ञान को सुन लिया, न जाने इसका क्या उपयोग करेगा। भगवान शंकर ने उसे कुछ नहीं पूछा और भगवान शंकर अपना त्रिशूल लिए, त्रिलोकी की रक्षा करने वाले भगवान शंकर आज उस ज्ञान की रक्षा के लिए दौड़े कि इस ज्ञान का कहीं दुरुपयोग न हो जाए। तो इसने यहां सुन लिया और ये तोता न जाने क्या कैसे इसका उपयोग करेगा, इसको मार दिया जाए। दौड़े दौड़े भगवान शंकर उसके पीछे पीछे त्रिशूल लिए जा रहे हैं, आगे आगे वो सुख शावक जा रहा है। अब उस सुख शावक ने, तोते ने विचार किया, कहां जाऊं, किधर जाऊं, कौन मेरा है, तो कहीं उसको आश्रय नहीं मिला। तो दौड़ते दौड़ते उड़ते 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 वो बद्रीनारायण में आया और बद्रीनारायण के झाड़ियों के अंदर एक बहुत सुंदर कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के अंदर वेदव्यास जी महाराज विराजमान थे। वो कुटिया ज्ञान से जगमगा रही थी। देखो, जहां भगवत भाव होता है, ज्ञान होता है, तपस्या होती है, वो क्षेत्र औरों से बड़ा विलक्षण होता है। सुखदेव जी महाराज वहां गए तो वहां वेदव्यास जी की पत्नी थी, वो मुंह खोले हुए बैठी हुई थी और उनको नींद आ रही थी। देखा कि अब सबसे बड़ा आश्रय यही है, इसके अलावा कोई आश्रय नहीं है। सुखदेव जी महाराज उसके मुंह में चले गए और मुंह में जाकर के पेट में बैठ गए। इतने में ही भगवान शंकर आ गए। शंकर भगवान के सामने समस्या खड़ी हो गई कि अब मैं उसको कैसे मारूं? एक तो ये स्त्री है, एक ये ब्राह्मणी है और सबसे बड़ी बात ये वेदव्यास जी महाराज की अर्धांगिनी है। अब इन पर त्रिशूल कैसे चलाऊं? मेरा त्रिशूल तो आतायों पर चलता है, मेरा त्रिशूल पापियों पर चलता है, मेरा त्रिशूल स्त्रियों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए चलता है, वो मेरा त्रिशूल आज वेदव्यास जी की कुटिया में चलेगा, एक ब्राह्मणी के ऊपर चलेगा? उनका त्रिशूल रुक गया। भगवान शंकर स्तब्ध हो गए और बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए। इतने में ही वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वो भी चाहते थे कि हमारा सुख शावक कहां चला गया, हमको छोड़कर, जो हमको राधा जी की बात सुनाता था। राधा जी भी याद करती रही कि वो सुख शावक कहां चला गया जो हमको कृष्ण की लीला सुनाता था। भगवान श्री कृष्ण देखा कि वो तो वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में विराजमान है, तो बहुत संतोष हुआ उनको। और भगवान शंकर अपने हाथ में त्रिशूल लिए उसे मारना जो चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान शंकर से कहने लगे, हो आशुतोष प्रभु, बड़ा स्वागत है आपका, कैसे पधारे? भगवान शंकर ने कहा, हो मेरे आराध्य कृष्ण, आप कैसे पधारे? अब देखो, दोनों को ही फल मिल रहा है। भगवान शंकर को तो इस बात का फल मिला कि उन्होंने भगवान की कथा सुनाई थी पार्वती को, और भगवान कृष्ण है, वे आए अपना कथा सुनने का फल देने के लिए हमारे सुख शावक सुखदेव जी के पास। सबको फल मिल गया। भगवान किसी को रीता नहीं रखते हैं, अपनी तरफ चलने वाले में किसी को भी रीता नहीं रखते हैं। भगवान शंकर से कहा कि महाराज अपने त्रिशूल को आप कृपा के लपेटे में ले लीजिए, आप इससे सुख सावक का वध करने का विचार छोड़ दीजिए। इस सुख सावक की जिम्मेवारी मेरी है, ये आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान का बहुत बड़ा आदर करेगा और इसी ज्ञान को वो संसार के कल्याण के लिए उपयोग करेगा। बोलिए आप क्या चाहते हैं? कि यही मैं चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने आपको वचन दिया, ये सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो भाई उस समय भगवान शंकर ने बहुत प्रसन्नता से कृष्ण भगवान का अभिवादन किया और अपने स्थान पर आ गए और भगवान श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। वे ही सुख सावक, वे ही सुख, वो ही तोता सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ था। उनकी ये वाणी वेद व्यास जी महाराज ने संकलित की है और क्या बताएं, आपको बड़ा अचंभा होगा कि उनकी वाणी उन्होंने संकलित की और फिर उन्हें सुखदेव जी ने इसको पढ़ा है। सुखदेव जी भागवत के वक्ता भी है और भागवत के श्रोता भी है, इसको पढ़ने वाले भी है, ये बात क्या है? तो भाई इस बात को आप लोग युक्तियों से या किसी और पहलुओं से नहीं समझ पाएंगे, जब इस कथा के अंदर आप प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भागवत के वक्ता की न कोई कीमत है और न कोई श्रोता की कीमत है। वक्ता और श्रोता के बीच में जो भागवत है केवल उसी की कीमत है। कीमत भागवत की है, वक्ता की या श्रोता की नहीं। ऐसा ये भागवत है। उस भागवत की महिमा में स्कंद पुराण में जो ये 6 अध्याय आए, पद्म पुराण में 6 अध्याय, उन 6 अध्यायों में बड़ी विचित्र महिमा और सत्य सत्य महिमा लिखी हुई है। उस महिमा का आज हम यहाँ श्री गणेश करते हैं। उस महिमा के अंदर ये बताया जाएगा कि श्रीमद् भागवत वास्तव में क्या है और कैसा लाभप्रद है और किन किन को इससे इनका लाभ हुआ है, ये महिमा में बातें बताएंगे। और भी कई बातें इसमें बताई जाएंगी, वो तो आप जो जो सुनते जाएंगे त्यों त्यों आपको पता भी चलता जाएगा। भागवत वास्तव में हमारे साथ कितना गहरा संबंध रखने वाला है और कितना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ये आप सुनने पर जान सकेंगे। तो इस भागवत की महिमा को लिखते हुए बोलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। क्या विचित्र बात बताई है, श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आप पूरे भागवत में देख लेना, भगवान कृष्ण के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी महिमा के इस आरंभिक श्लोक के अंदर बताया कि श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण या श्री का क्या अर्थ है? कृष्ण शब्द में सब बात आ जाती है, कृष्ण के अंदर सब चीज आ गई। कृष्ण माने जो अपने को अपनी ओर, जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करे उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण के कई अर्थ होते हैं, जो थोड़ा काला होता उसका नाम भी कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का ये काला नाम क्यों पड़ा, ये बातें तो आप आगे जो जो चलेंगे तो पता चलेगा, पर यहाँ कृष्ण का अर्थ है आकृष्ट करने वाला, सब जगत को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला, वो कृष्ण है। तो ये आकृष्ट कैसे करता है? देखो, काल शक्ति के द्वारा सब वस्तुएं दौड़ी दौड़ी एक ऐसे तत्व में विलीन हो रही है कि जो स्वयं सदा कायम रहता है वो है काल तत्व। ये काल तत्व ही कृष्ण तत्व है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो कृष्ण है ये इतना सुंदर, इतना विलक्षण कि इसके बिना कोई रह नहीं सकता, सब इस ओर आकृष्ट होते हैं। हमारे भरत जी महाराज ने कहा है कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको राम जी प्रिय ना हो, राम सबको प्रिय है। तो वो राम प्रिय है ना, इसलिए राम सबको भाते हैं। देखो आप हम सब जितने मनुष्य हैं, सब मनुष्यों को वास्तव में भगवान की प्रियता है, भगवान ही मीठे लगते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण है वो आकृष्ट करते हैं कि कहा हम तो भगवान को मानते ही नहीं। कोई कहे कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं, आप प्रेम करने की बात कहते हो, हम तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान नाम की चीज है ही नहीं। कोई बात नहीं, जो भगवान को नहीं मानता वो कोई जो है कोई विशेष उसके लिए खतरे की बात नहीं है। भगवान को नहीं मानता तो नहीं मानता, पर उसको एक बात पूछते हैं कि तुम जो है मरना चाहते हो कि जीना चाहते हो, इतनी बात बता दो। क्या तुमको मृत्यु पसंद है कि मृत्यु तो पसंद नहीं है, तो जीना चाहते हो ना कि जीना चाहते हैं? तो जीना चाहते हो, ये जीने का अर्थ ही भगवान है। कि जीने का अर्थ भगवान कैसे, कि जो सदा रहता है कभी मरता ही नहीं है, उसका नाम भगवान है। आपको भगवान के नाम से चिढ़ हो सकती है लेकिन भगवान भगवत तत्व से आप कभी भी विमुख हो नहीं सकते, कोई नहीं हो सकता। भगवान शब्द प्यारा भले ही न लगे परंतु भगवत तत्व है वो एक अलग। कोई कह दे कि देखो भाई मुझे पानी पसंद नहीं है, पानी मैं नहीं पीता, मैंने मुझे पानी पसंद ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हाथ में गिलास है और उसमें पानी है, पानी का घूंट पी रहा है, कहता मुझे पानी पसंद नहीं है, तो भाई पानी नाम पसंद नहीं होगा लेकिन तुम्हारे गिलास में क्या है? कि गिलास में तो जल है, कोई बात नहीं, जल है तो जल तो पसंद है, हाँ जल पसंद है, पानी पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो कहने कहने की बात है, चाहे पानी कहो चाहे जल कहो, तुमको ये तत्व पसंद है, गिलास में जो ये द्रव पदार्थ है ये बहुत पसंद है पर पानी पसंद नहीं है। तो ये एक बचपनी बात है, ये कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही हम लोग ये कहें कि भाई हमको भगवान पसंद नहीं, हम भगवान को पसंद नहीं करते पर एक सत्ता को पसंद करते हैं, रहने को पसंद करते हैं, जीना अच्छा लगता है और हमको सुख बड़ा अच्छा लगता है, आनंद बड़ा अच्छा लगता है, बस ठीक है भाई हो गया। आप भगवान को मानते हैं, आपको मानना पड़ता है और आपको मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ श्री कृष्णाय वयम नुमः, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले भगवान कृष्ण, और वो भी कैसे श्री। अब यते श्री माने श्री का अर्थ क्या होता है? कोई कहते हैं भाई श्री का अर्थ तो राधा जी है, भगवान की शोभा राधा जी है। श्री कृष्णाय माने श्री सहिताय, श्री सहिताय माने राधा सहिताय कृष्णाय वयम नुमः, अच्छी बात है। कोई कहते हैं कि वास्तव में श्री माने शोभा, भगवान की शोभा किससे होती है, किससे शोभा है भगवान की? भगवान की शोभा न तो राधा जी से है, भगवान की शोभा न वैकुंठ से है, भगवान की शोभा न भगवान के उन दिव्य आयुधों से है। तो भगवान की यदि शोभा है तो वास्तव में भगवान के भक्तों से है। तो श्री सही श्री कृष्णाय अर्थात भक्तों का जो स्वामी है, भक्तों के बीच में बैठकर जिसकी शोभा निराली होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, अर्थात कृष्ण को और कृष्ण के सब भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं कैसे आपके कृष्ण है, कैसे कि सच्चिदानंद रूपाय, पहला नाम दिया सत चित और आनंद रूप। सत उनका रूप, चित उनका रूप और आनंद उनका रूप। देखो सत चित और आनंद ये कहने के लिए तीन है, वो वास्तव में तीन नहीं है, ये तीनों का एक मिला हुआ रूप है। उस मिले हुए रूप में सत को अलग नहीं कर सकते और चित को अलग नहीं कर सकते, आनंद को अलग नहीं कर सकते, वो मिला हुआ रूप है। सत चित और आनंद तीनों मिला हुआ संपृक्त रूप। उस संपृक्त रूप में बताते हैं कि सत है माने सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता और जो सबके नाश का आधार है। जितना परिवर्तन है जगत का परिवर्तन, ये परिवर्तन जिसके द्वारा होता है, परंतु जो स्वयं ज्यों का त्यों रहता है उसका नाम सत है। सत उसका त्रिकाल में भी अभाव नहीं होता, और वो सत है वो चित भी है। चित माने अपने को जानता भी है, ऐसा नहीं कि वो चित है वो अपने को जानता न हो, जानता है इसलिए उसका नाम चित है। अब देखो आप हम सभी खुद विचार कर सकते हैं कि हम जो अपने को एक होना मानते हैं कि हम हैं, तो हम जो है ना वो हम हमारी सत्ता को मानते भी हैं, हमारी सत्ता को हम जानते भी हैं कि हम हैं। हम अपनी सत्ता में हैं भी और हम अपनी सत्ता को जानते भी हैं, और हमारे जानने में और हमारी सत्ता में कोई हमको कष्ट नहीं है, इसलिए आनंद भी है। सत में आनंद, चित में आनंद, आनंद में आनंद, आनंद में सत, आनंद में चित, और चित में आनंद, चित में सत, और सत में चित, और सत में आनंद, सब आपस में एक समान मिले हुए हैं। वही सच्चिदानंद रूप आये, सत चित आनंद रूप वाला ये स्वरूप भगवान कृष्ण का ही है। ये जो जगत है, जगत ये जगत सच्चिदानंदमय है। कहते हैं जगत को यदि सच्चिदानंदमय मानेंगे तो जगत तो पैदा होता है और नष्ट होता है, तो ये सत कैसे हुआ? कहते हैं जगत है ना, इसका नाम और रूप ये पैदा होता और नष्ट होता है, पर इसका असली रूप नष्ट नहीं होता। इसका असली जो स्वरूप है ना वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे वृक्ष है, उस वृक्ष का जो बीज है वो बीज से ही वृक्ष पैदा होता है और अंत में वो बीज ही देता है। तो एक छोटे से बीज के अंदर सारा का सारा हजारों मीलों का जंगल समाया हुआ है एक बीज के अंदर। बट का बीज बीज होता है छोटा सा, उसके अंदर कितने कितने बट वृक्ष समाये हुए हैं कोई इसका अंदाज नहीं है। उसी में ही पत्ते हैं, उसी में ही तने हैं। दिखने में क्या छोटा सा कि इसमें कहां पेड़ है भाई, कि भाई आपके देखने का तरीका गलत है। बीज को देख करके हम लोग बीज के कार्य को अभी न देखे, इस बीज के सामर्थ्य को देखें। सामर्थ्य को, इस बीज का सामर्थ्य कैसा है, कितना सामर्थ्य है इस बीज का। सामर्थ्य है एक नीम का बीज, निमोली, वो बहुत बड़े जंगल को, नीम के जंगल को पैदा कर सके, इतनी क्षमता है। ऐसे ये संसार का जो मूल बीज है परमात्मा, वो सच्चिदानंद रूपाय है। कहते हैं कि अच्छा यदि सच्चिदानंद रूप ही उसका है, तब तो फिर ये संसार बनाना तो व्यर्थ हो गया। हमें इस संसार से क्या मतलब, कि विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, वो परब्रह्म परमात्मा ही अपने संकल्प से विश्व को पैदा करता है, विश्व को कायम रखता है और अंत में विश्व को अपने में समेट लेता है। तीनों काम वो खुद करता है, उसका ये मूल कारण है ये परमात्मा। जगत की उत्पत्ति का कारण, जगत की स्थिति का कारण और जगत के लय का कारण। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये भगवान के यहाँ जगत के विषय में होते ही रहते हैं। उनके लिए बड़ी बात नहीं। जैसे हमारे अंदर कोई विचार पैदा हुआ और फिर उस विचार में हम खोए खोए से रहे और फिर वो विचार गायब भी हो गया, तो जैसे हमारे अंदर एक विचार पैदा होता ऐसे ही भगवान के अंदर ये सृष्टि पैदा हो गई। गीता में इसको विसर्ग कहा, विसर्ग। विसर्ग है कर्म संगीत है, इसको सर्ग भी बोलते हैं और विसर्ग भी बोलते हैं। सर्ग कहो विसर्ग कहो, ये विसर्ग माने त्याग। भगवान का जब संकल्प होता है वो संकल्प भगवान से पैदा होता है तो वो भगवान से थोड़ा अलग हुआ ही, भगवान में ही हुआ पर भगवान से अलग हुआ। जैसे पानी के अंदर बुदबुदा उठाई हूँ तो बुदबुदा पानी में ही उठा, उठते हुए भी वो बुदबुदा एक तरह से और रूप में आ गया। ऐसे ही भगवान का संकल्प जो बना सृष्टि का वही सृष्टि बन गई। तो ये नाम और रूप उसका थोड़ा सा बदल गया है, वो भगवान ही। जैसे बुदबुदा है वो पानी के अलावा कुछ नहीं है, वो पानी ही है। पानी के साथ हवा का एक दूसरा रूप बन जाने से वो गोल गोल सा बुदबुदा दिखने लग गया। पानी के बिना थोड़े ही ठहरता है, पानी से ही पैदा होता है और पानी के अंदर ही फूट जाने से पानी में ही लीन होता है वो। जैसे बुदबुदा पानी में, पानी का रूप पानी वाला ही, ऐसे ये सृष्टि भी एक बुदबुदा मात्र है, भगवान के अंदर से पैदा हुई, भगवान का ही स्वरूप है और ये भगवान में लीन हो जाने वाली है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, दो बात बताई। अब कहे कि भाई हमको भगवान से क्या लेना देना, भगवान विश्व के उत्पत्ति के कारण है तो अच्छी बात, भगवान संसार को अपने में समेट लेते हैं अच्छी बात, वो सत है तो अच्छी बात, चित है तो अच्छी बात और आनंद रूप है तो अच्छी बात। हमारा और भगवान का क्या मेल है, कैसे क्या संबंध है, हमारे लिए भगवान क्या काम आते हैं? तो कहा कि तापत्रय विनाशाय, ये खास बात बताई है। भगवान त्रिविध ताप का संताप करने वाले हैं, संताप को दूर करने वाले हैं, त्रिविध संतापों को दूर करने वाले हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय, देखो भगवान की ये दयालुता बता रहे हैं। हमारे लिए भगवान का क्या संबंध है कि हमने कोई भगवान का सृष्टि में अपराध कर लिया, हमने कोई पाप कर लिया, तो पाप का फल ही तो ताप होता है। पाप करते हैं तो उसके फल से हमको संताप होता है, तो अब संताप हो गया हमको। तो कहते हैं पाप कर लेवे लेकिन संताप न होवे, ऐसी तो हर आदमी बात चाहेगा ही ना कि गलती हो जाए, हो गई गलती लेकिन उसका फल न मिले, फल न मिले, गलती हो गई और हमको फल न मिले। हाँ ऐसी एक जगह है क्या कि भगवान की शरण में आ जाओ। तो ये भगवान हमारे कहाँ काम आते हैं कि हम भगवान के इस सृष्टि में जब से आए तब से हमने अनेक अनेक पाप के पुंज बना लिए, अब उन पाप राशि की समाप्ति के लिए हमको किसी की दया की जरूरत है, कृपा की जरूरत है, और कोई उपाय नहीं है। कोई दूसरा उपाय नहीं कि जिससे हम लोग पाप रहित हो जाए। पाप रहित होने के लिए एक ही उपाय है, कोई हमारी आकर रक्षा करे। जैसे वो गजेंद्र था, वो फंस गया पानी के अंदर ग्राह के फंदे में, तो यह कश्चनेशु बलिलोन तकोरगात प्रचंड वेगा दवि धावतु भृशम, माने यह कश्चनेश, अरे वो कोई ईश्वर, वो कोई ईश्वर जो जगत का ईश्वर हो आवे और मुझे बचाए। उसने कोई नाम नहीं लिया भगवान का, कोई नाम नहीं जानता था बेचारा, किसका नाम लेवे वो। यह कश्चनेश, वो कोई ईश्वर। ऐसे ही हमारे अत्रि ऋषि थे, अनुसुईया के साथ तपस्या कर रहे थे, वो गए हे जगत के मालिक, हे जगत के मालिक। तो तीन जने आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो जी क्या बात है, तो आप तीन क्यों आए, कि तुमने जगत का ईश्वर क्यों कहा भाई, एक ईश्वरी पुकारते तो आ जाए, तुम जगत के ईश्वर, जगत को साथ में जोड़ दिया तो जगत के साथ संबंध होते तो हम तीनों आएंगे। ऐसे ही तापत्रय विनाशाय, अरे हमने पाप कर लिया, गलती कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन हमको कोई ऐसा आश्रय जरूर चाहिए कि भाई कर लिया सो कर लिया, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, तुम चिंता मत करो। बच्चा है वो गली में जाकर कोई गलती कर आया और दौड़ा दौड़ा माँ के पास है, हाँ माँ 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 मेरे से तो ये गलती हो गई, अब जो है तुम मुझे बचाओ, माँ की चिंता मत कर, कोई आएगा मैं बात कर लूंगा। इतने में ही 5-10 एक बच्चे आए, कहने लगे मैया तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को पीटा है, ऐसा किया वैसा किया, कोई बात नहीं अब नहीं करेगा, जाओ यहां से, अब नहीं करेगा, अब करे तुम हमको बोल देना। तो मैया आगे खड़ी हो जाती है, बच्चे के सामने मैया खड़ी हो जाती है, और वो बच्चा यदि माँ के पास नहीं जाए तो उस गली के अंदर ही लड़ता झगड़ता रहेगा, पिटेगा 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 पिटेगा, या तो पीटेगा या पिटेगा, और कई लोग खुद पीट देंगे उसको, लेकिन माँ की गोद में आ गया तो मान के कोई बात नहीं। ऐसे तापत्र है विनाशा है, कैसे दयालु है वो प्रभु के, जो हमारे किए हुए पाप का जो फल ताप है, उस पाप तो कर लिया लेकिन ताप को मिटा दिया। भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो ये बात तो सदा ही याद रखनी पड़ेगी कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, हमको हमारे पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। पर कब तक ये नियम है, ये भगवान की तरफ नहीं चलते हैं, भगवान की शरण नहीं होते तभी तक है, भगवान की शरण में जाने के बाद फिर ये लागू नहीं होता कि हमको हमारा कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध, कि इतने दयालु है भगवान। तापत्रय विनाशाय, देखो यदि तापत्रय विनाशाय न कहा जाए तो वास्तव में हम भगवान को क्यों पुकारेंगे, क्यों याद करेंगे, क्योंकि वो अशरण शरण है, अनाथ नाथ है, दीन नाथ है, जगत नाथ है, वो करुणा सागर है, करुणा वरुणालय है। ओ भगवान बहुत कृपा करने वाले, तभी तो भगवान की जरूरत है। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसको किसी न किसी की कृपा की जरूरत न होती हो। यहां संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं कि जो किसी न किसी की कृपा को लिए बिना ही अपने आप अपनी शक्ति से कोई काम कर सकता हो, कोई प्राणी नहीं मिलेगा। मिथ्या अहंकार कर लेते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें क्या मतलब, हमारा कौन है क्या है, ये अहंकार की भाषा नहीं है, सच्चाई की भाषा आनी चाहिए कि हर आदमी को किसी न किसी का सहारा, किसी न किसी का शरण, किसी न किसी की कृपा दृष्टि ये जरूर चाहिए। तो जब किसी न किसी की कृपा लेनी ही है तो भाई जो भी कोई हमको कृपा मिलेगी वो घूम फिर करके भगवान से ही मिलेगी, तो सीधा ही भगवान से क्यों नहीं ले ले, सीधा फिर भगवान से ही कृपा मांगे। दिल्ली का बादशाह था, वो घूमते घूमते चला गया जंगल में, उसको भूख लगी आई, प्यास भी लगी आई, गर्मी का समय था, तो एक खेत के अंदर गया, कुटिया थी, बढ़िया नीम का पेड़, और वहां पर उसका जो है एक अरहट चल रहा था, अरहट कोई जो है अरहट चलते ही थे पुराने जमाने में। वो वहां पर पहुंचा, अपने घोड़े पर बैठा हुआ, वो था एक कोई किसान, किसान ने देखा कोई आए, आओ साहब बैठो, तो नीम की तो ठंडी ठंडी छाया उस पर, उन्होंने अपनी खाटिया भी था निकला, बैठ जाओ, बैठ गए। और किसान ने पूछा क्यों जी, बताऊ जी आप कहां से आए, उसको क्या पता है दिल्ली का बादशाह है, कहां से आए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, भूखे हो तो आप भोजन कर लो, प्यासे हो तो आप जल पी लो, और भूखे और प्यासे दोनों ही हो तो आराम से आप मट्ठा छाछ पी लो, फिर थोड़ी देर विश्राम करके भोजन कर लो। तो उसने कहा कि भाई मैं बहुत देर का भूखा भी हूं, प्यासा भी हूं, गर्मी में मैं तड़प भी रहा हूं, कि आप आराम करो, पहले आराम करके उसको खूब अच्छे ढंग से पहले मट्ठा ठंडा ठंडा मट्ठा पिलाया और उसके बाद में भोजन कराया, भोजन करने के बाद उसने उस जो है अर्घ चलता ही था, ठंडा बढ़िया मीठा जल था, जल पिया उसकी आंख लगी, सो गया वो। घंटे दो घंटे आराम से सोने के बाद वो जाने लगा, बस आप चले जाओ। उसने कहा कि अरे तूने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, कि मुझे इससे क्या मतलब आप कौन है। अरे तुझे मालूम नहीं है, मैं तुझे बताऊं कि मैं दिल्ली का बादशाह हूं। अच्छा आप दिल्ली के बादशाह हैं, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी सेवा में तो साहब कोई त्रुटि रह जाए तो आप ध्यान मत देना, हमारे पास जो सामग्री थी वो नहीं कोई बात नहीं, मैं तुमको एक बात बताता हूं कि तुम जो है भगवान न करे कभी पर तुम्हारे पर कोई आफत आए, किसी प्रकार की तुमको जरूरत हो, कोई भी बात हो ना, तो देखो हम तुमको ये लिख देते हैं, एक ठीकरी ले आओ, ठीकरी ले तुम हमारे दिल्ली में दरबार में आ जाना, वहां पर तुमको पहरेदार रोके तो ये ठीकरी तुमको लिख के देता हूं, दंजे दस्तखत किया हुआ ये सामने दिखा देना, तुमको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब एक ठीकरी ली, उस पर लिखा हुआ था कि ये मेरा खास अपना आदमी है, कोई इसको भीतर प्रवेश करते हुए न रोके, नीचे बादशाह ने अपने दस्तखत कर दिए। उसने वो ठीकरी लेकर के और अपने झोपड़े के अंदर कहीं रख दिया, भूल गया वो, और वो अपने चला गया, वो किसान भी अपने रहने लगा। उसी साल अकाल पड़ा, चारों तरफ हाई त्राही मची, अकाल पड़ा तो उसके भी भाई बड़ा भारी नुकसान हुआ। उसने देखा कि अपने यहाँ वो बादशाह आए थे, बादशाह अब आज काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे, क्योंकि तो बादशाह के पास जावेर कहे कि जी हम लोग तो हाई त्राही में फंसे हुए हैं, हमारी कोई न कोई आप व्यवस्था करवाओ, न तो जल की जो है हमें पूर्ति मिल रही है, न हमको जो है पशुओं के लिए घास मिल रहा है, न हमको अन्न मिल रहा है, चलो चलते हैं, मन भी सोच लिया और वो ठीकरी लेकर के रवाना हुआ। और वो ठीकरी से लिखा हुआ आज्ञा पत्र था वो, एक तरह से वो दरवाजे पर गया, वहां पहरेदार खड़े थे, कौन हो तुम, साहब हम तो देख लो हमारी, अच्छा अच्छा आवा जाओ। ऐसे करते करते वो बादशाह के अंदर के कमरे तक पहुंच गया, और उस समय बादशाह की नमाज का समय हो रहा था। अब उस बेचारे किसान को क्या पता कि नमाज क्या होती है, वो बादशाह यू बैठा, वो यू कभी तो खड़ा हो कभी बैठे, फिर कभी क्या करे, कभी नीचा हो ऊंचा हो, जो उनके नमाज का कायदा है वो पूरा कर रहा था, वो बैठ गया एक जगह, वो देखता रहा। देखते देखते जब उसने नमाज पूरी कर ली तब कह रहे आओ आओ मित्र आओ वही आओ, बहुत प्रेम से उसने बात की। तो उसने किसान ने पूछा कि जी आप अभी ये ऊंचे नीचे क्या हो रहे थे, कभी खड़े होते थे कभी बैठते थे कभी खड़े, ये क्या था आपके। कहने लगे देखो तुम लोग जिस प्रकार भगवान की पूजा करते हो ना, ऐसे हम मुसलमान लोग नमाज पढ़ा करते हैं, तो हमारा जैसा कायदा होता है उस कायदे के अनुसार कुछ देर खड़ा रहना पड़ता है, कुछ देर बैठे रहना पड़ता है, और हमको हमारी नियत खुदा के अंदर लगानी पड़ती है। ऐसे हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, नमाज का समय था, तो अपना समय होते ही मैं नमाज में बैठ गया, तो ये नमाज पढ़ रहा था मैंने, मैं भगवान को याद कर रहा था। अच्छा अच्छा भगवान को याद कर रहे थे, भगवान को क्यों याद कर रहे थे। अब भगवान को ही तो याद करना चाहिए भाई, और तो कौन, आज जो कुछ है सब भगवान का ही तो दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, तो तुम भगवान से क्या मांग रहे थे। ये मांग रहा था कि मेरी प्रजा को सुख मिले, मेरी प्रजा को आराम मिले, कोई कष्ट न मिले, भगवान से मांग रहा था, ठीक है। इतना सुनते ही वो किसान मुंह मोड़ के रवाना हो लगा। बादशाह ने बोला अरे जा क्यों रहा है, जा क्यों रहा है भाई, तो किसी काम से आया था ना। तो कहा कि भाई अरे बादशाह मैंने तो सोचा कि दिल्ली का बादशाह होता है वो तो बहुत बड़ा देने वाला होता है, अरे तू ही किसी से हाथ पसारता है तो उसके सामने तो फिर हम भी हाथ पसार लेंगे, फिर तेरे पास हाथ पसारने से क्या होगा। वहां से रवाना हो गया वो। तो भाई हमको किसी की भी कृपा मिलती है घूम फिर करके, भगवान की कृपा मिलती है तो सीधा हम भगवान की कृपा क्यों नहीं ले ले। तो तापत्रय विनाशाय, इस युक्ति के द्वारा तो प्रत्येक मनुष्य को भगवान की बहुत ही ज्यादा जरूरत प्रतीत होती है। ऐसे सबके परम आश्रय, परम दाता, सबके संताप को दूर करने वाले भगवान, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब बताओ इसमें भगवान के तीन विशेषण बताएं। एक विशेषण में बताया कि सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा विशेषण बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तीसरा बताया तापत्रय विनाशाय। ये तीन विशेषण का अर्थ क्या हुआ कि भगवान की प्राप्ति के लिए तीन उपाय हैं। या तो ज्ञान योग है जो कि सच्चिदानंद रूपाय के माध्यम से चलता है, दूसरा कर्मयोग है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसमें विश्व में दिखाई देने वाली वस्तु और विश्व में दिखाई देने वाले मनुष्य, इन वस्तुओं से इन्हीं मनुष्यों की सेवा करके अपना कर्मयोग कर लिया जाए, और तीसरा है तापत्रय विनाशाय, उस ईश्वर की शरणागति प्राप्त करके भक्तियों के द्वारा कल्याण कर लिया जाए। तीन बड़े साधन, और तीन साधनों के द्वारा यहाँ पर भगवान के तीन विशेषण बताए और भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखो श्री कृष्णायाहम नौमी, माने भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा हो सकता है, परंतु ये नहीं कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब नमस्कार करते हैं। देखो हमारे ऋषियों की कैसी उदार दृष्टि है, वो कितनी उदार, कितनी व्यापक, कितनी सरल, कितनी श्रेष्ठ और कितनी ऊंची दृष्टि है कि प्रणाम करते हैं खुद और लेते हैं आप, हम सबको साथ में लेते हैं, सबको साथ में लेके हम प्रणाम करते हैं। माने भगवान को प्रणाम करने का फल भी मुझको अकेले को न मिले, सारे संसार को मिले। तो भगवान से यही प्रार्थना की है उन्होंने कि वयम नुमे, हम सब आपको नमस्कार करते हैं और इस नमस्कार करने का फल मुझे अकेले को न मिले, सबको मिले। कितना व्यापक दृष्टिकोण है। आप लोग कभी कभी यज्ञ में बैठते होंगे, सुनते होंगे, तो वहां पर यही आता है कि इदम भगवते न मम, इदम इंद्राय न मम, इदम अग्नये न मम, इदम वरुणाय न मम, ये वस्तु इंद्र के लिए है, ये मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये अग्नये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो न मम साथ में बोलते न मम, मेरे लिए नहीं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः है, ये भगवान के प्रति किया हुआ नमस्कार भी संत महापुरुष केवल उसका फल अपने लिए नहीं मानते हैं ना, वयम नमः, सारे संसार के हम लोग मिलकर के आपको नमस्कार करते हैं। यदि इस नमस्कार का कोई आप आशीर्वाद देते हो तो ये इसका फल देते हो, सबको मिलना चाहिए, हमको अकेले को नहीं मिलना चाहिए। क्या विचित्र दृष्टिकोण है। एक संतों ने लिखा है अपनी वाणी में, अपने उपदेश में लिखा है कि जो और मनुष्यों को छोड़ करके केवल अपना कल्याण चाहता है, वो भी वास्तव में भोगी है। कैसी कैसी बात लिखी है, सबका कल्याण, सबका कल्याण, ऐसी ऐसी बातें संतों की है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, अब ये भगवान की बात हो गई। अब भगवान के बाद में, भगवान तो देखो एक मानी हुई चीज होती है, भगवान कोई माने कोई न माने, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे देखने में कौन आते हैं, ऊंचे पुरुष कौन है, कि जो संत होते हैं। अब संत वंदना चालू करते हैं, संत वंदना में सबसे विलक्षण संत है हमारे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जैसा कोई संत हमारे पूरे पूरे संत प्रकरण में ऐसा कोई दूसरा मिलता नहीं है। इसका अर्थ कोई संतों की कैटेगरी में ऊंचा नीचा कर रहे हैं, ये भाव नहीं है। माना किसी एक संत को लिया जाएगा तो सब संतों ने सुखदेव जी का गुणगान गाया, सब संतों ने, कोई ऐसा संत नहीं जिसने सुखदेव जी का गुणगान नहीं गाया हो। क्यों, वो एक जगत के अंदर ऐसे निराले संत थे कि जिनके जिनके मन में सिवाय जगत के कल्याण के अलावा और कुछ बात उनके मन में पैदा ही नहीं हुई, कुछ जानते ही नहीं हुए, उनका संकल्प भगवान के संकल्प के साथ एक हुआ हुआ था। तो कहते हैं यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रे तन्मयतया तरवो भिने दोस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मी। और संतों में और सुखदेव जी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि और संत कुछ दिन अपने माँ बाप के गोद में खेले पले पोसे सब किया, पर हमारे सुखदेव जी महाराज तो ऐसे थे कि माँ के यहाँ जन्म लिए और रवाना हो गए, माँ की गोद में रहे ही नहीं, माँ का प्यार उन्होंने लिया ही नहीं, माँ के प्यार की उनको जरूरत भी नहीं थी, पिता के प्यार की जरूरत नहीं थी, वो चले ही गए, चलते ही गए। तो ये क्या है, ये परिव्राजक है, संतों को परिव्राजक बोलते हैं। परिव्राजक, परिव्राजक माने घुमक्कड़ महात्मा, घूम घूमते इधर, जिनका कोई ठहराव नहीं होता वो घुमक्कड़ होते हैं। हमारे सुखदेव जी कैसे हैं कि यम प्रव्रजंतम, यह भी एक बड़े विलक्षण परिव्राट है, परिव्राजक है, घुमक्कड़ महात्मा है। कहां से घूम रहे हैं, बैकुंठ से, गोलोक से, गोलोक से घूमते घूमते आए शिवलोक में, शिवलोक से घूम करके आए बद्रीनारायण में, बद्रीनारायण में माँ के जो है पेट में रहे और वहां से निकले तो फिर ये घूमते रहे, फिर उत्तराखंड में चले गए और वहां जाकर के रहे, फिर एक बार कथा करके जाने कहां चले, घूमते ही रहे घूमते ही रहे। ये विलक्षण परिव्राजक यम प्रव्रजंतम, एक तो ब्रजंतम है, ब्रजंतम माने ब्रजंत का अर्थ और प्रव्रजंत का अर्थ कोई विशेष फर्क नहीं है, पर विशेष फर्क है भी, माने भाव दृष्टि से देखें कि ऐसे वो परिव्राजक थे, ऐसे वो घुमक्कड़ थे कि कहीं ठहराव किया ही नहीं, कहीं उन्होंने ममता का क्षेत्र बनाया ही नहीं। ठहरने का अर्थ है ममता का क्षेत्र बनाना, घूमते तो सभी है लेकिन घूम घाम करके अपने मन में एक ठहराव की जगह, तो वहां जाएंगे तो वहां हमारी जगह है, वहां हमारा आश्रम है, वहां हमारा घर है, वहां हमारे परिवार का सदस्य रहता है, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ हमारे ममता के ठहराव हैं। लेकिन हमारे सुखदेव जी के यहाँ तो कोई ममता का ठहराव भी नहीं। यम प्रव्रजंतम, माता को आश्चर्य हुआ, पिता को आश्चर्य हुआ कि अभी इसकी जनेऊ ही नहीं हुई, अभी इसका नाम ही नहीं रखा गया, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, संस्कार विहीन, हमारे संस्कार विहीन थे ये सुखदेव जी।